कौन सा स्थान है जहां पर नदी है पर पानी नहीं? वो कौन सा स्थान है जहां पर सड़कें हैं पर गाड़ी नहीं? वो कौन सा स्थान है जहां जंगल है पर पेड़ नहीं? वो कौन सा स्थान है जहां शहर है पर घर नहीं? सबसे प्रश्न है, सोचो अभी अभी। वो कौन सा स्थान है जहां नदी है पर पानी नहीं, शहर है पर घर नहीं, सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं? नक्शा, अंग्रेजी में एक शब्द है स्पिरिचुअल मैपिंग, आध्यात्मिक नक्शा, जहां पहुंचना है उसका क्या करना है, एक नक्शा कहां बनाना है अपने मन में। सारी उपलब्धियां सबसे पहले कहां होती है, मन में। बाहर की लड़ाइयां सबसे पहले कहां जीती जाती है, मन में। अंदर की जीत हो गई तो बाहर की जीत केवल उसका प्रोजेक्शन मात्र है, उसका प्रक्षेपण मात्र है। स्पिरिचुअल मैपिंग अपने आप में एक साइंस है जो कहता है जो विकार है वो जैसे कोई व्यक्ति है, काम का विकार, क्रोध का विकार, लोभ का विकार, अहंकार का विकार, ये सभी एक एक डेविल राक्षस है और इनकी अलग अलग सत्ताएं हैं और इनकी अलग अलग जगह है, अलग अलग स्थानों पर ये रहते हैं, इनका निवास है। और स्पिरिचुअल मैपिंग में एक युद्ध किया जाता है, अलग अलग टेक्निक्स हैं उसमें, जैसे कुछ एरियाज है शहर की जहां पे काम विकार अधिक मात्रा में, द स्पिरिट ऑफ लस्ट वहां दिखे, कुछ एरिया है जहां पर स्पिरिट ऑफ एंगर। तो स्पिरिचुअल मैपिंग का सिद्धांत कहता है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भूत निवास करते हैं और इन भूतों से लड़ाई छेड़ देनी, अर्थात स्पिरिचुअल मैपिंग करना। तो हमारा ये जीवन भी क्या है, जैसे एक स्पिरिचुअल मैपिंग है। हमें अपने जीवन में, हमारे मन के शहर के अंदर, हमारे जीवन के की सृष्टि के अंदर कहाँ कौन से भूत निवास कर रहे हैं उसका मैप निकालना है और फिर उस अनुसार लड़ाई छेड़नी है। परंतु हमारा ये मैप कई बार क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए स्पष्टता नहीं आती। दो देशों के बीच जब लड़ाई होती थी पुराने जमाने में, तो क्या करते थे, नक्शा बनाते थे, यहां से वो युद्ध करेगा, यहां से हम गुजर जाएंगे, सब कुछ किया जाता था। उसी तरह हमारी भी लड़ाई एक अत्यंत शक्तिशाली शत्रु से है, जिसकी सेना हमसे कई गुना अधिक ज्यादा है, बहुत शक्तिशाली है। तो ऐसा स्पिरिचुअल मैप बनाना है। कैसे बनाना, वो हर एक अपना खुद बनाए, खुद ही अपने जीवन पर एक विहंगम दृष्टि डालते हुए इस मैप का निर्माण करना है। कि जब मैं घर पर रहता हूं तो ये कमजोरी होती है, ऑफिस में रहता हूं तो ये कमजोरी है, इन मित्रों के साथ रहता हूं तो ये कमजोरी है, उन लोगों के साथ रहता हूं तो अचानक वो संस्कार बाहर आता है। दिस इज स्पिरिचुअल मैपिंग। और ये हमारा ही स्वभाव है, हम जानेंगे विकार हमें नहीं खींचते, हम ही विकारों में खींचे जाते हैं। शायद बहुत प्यार है हमें उस विकार से, एक तरफ हम कहते हैं वो हमारा शत्रु है, हमें उससे लड़ाई करनी है, पर दूसरी तरफ हम कहते सबसे ज्यादा प्यार भी उनसे ही है। जैसे किसी नदी में बाढ़ आ जाती है, मीडिया के लोग आते हैं, सरपंच जी से पूछते हैं, एक प्रश्न है आपसे, आपके गांव की आबादी केवल 500 है पर जो लोग बचाए गए उनकी संख्या 900 है, ये कैसे हुआ? गांव की आबादी केवल 500 और जो हेलीकॉप्टर से बचाए गए लोग हैं, आर्मी ने जो बचाए, वो 900 कैसे हो गए? वो सरपंच जी कहते हैं ये 900 का आंकड़ा एकदम सही है, क्योंकि हमारे गांव के लोगों ने हेलीकॉप्टर कभी देखा ही नहीं था और उसमें कभी चढ़े ही नहीं थे, इसलिए आर्मी के लोग जब उन्हें निकालते थे बाहर, वो फिर किनारे पर जाकर फिर कूद पड़ते थे, क्योंकि उन्हें चढ़ने में बड़ा मजा आता था, खुशी होती थी। इसलिए गांव की आबादी 500 है परंतु बचने वालों की संख्या 900। हमें ही इच्छा है फिर कूदने की, हमें ही इच्छा है, प्रेम है उन विकारों से। एक तरफ तो अमृत वेला मुरली के समय उनके विरुद्ध हमारे मन में आक्रोश है, परंतु शाम होते होते फिर उनसे प्रेम उत्पन्न हो जाता है। नुमा शाम में फिर से थोड़ा सा क्रोध जागता है, पर रात होते होते फिर से दोस्ती, दोस्ती बहुत गहरी है, इसलिए हम कहीं पहुंच नहीं पाते। वहीं पर है, एक साल पहले जहां खड़े थे, जिस स्थिति में थे, जिस संस्कार के साथ थे, बीच में पता नहीं कितनी भट्टियाँ हो गई, बीच में पता नहीं कितने बाबा मिलन हो गए, बीच में पता नहीं कितनी मधुबन की यात्राएं हो गई, वो सब किया, पर है वहीं जहां थे, वही संस्कार, वही स्वभाव, वही बोल, वही सब कुछ, नाव वही के वही है। तो ब्रह्मा चरितमानस, सबसे पहला देखा हमने ब्रह्म मुहूर्त की 16 बातें, दूसरे दिन देखा ब्रह्मचर्य की 16 बातें, तीसरे दिन देखा ब्रह्मास्त्र अर्थात ईश्वरीय प्रेम की 16 बातें, कल हमने देखा ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, 8 और 8 16 बातें। आज हम देखेंगे ब्रह्मा पुत्र। ब्रह्मा पुत्र हिंदी में ब्रह्मा पुत्रा इंग्लिश में, तो ब्रह्मा के नाम से भक्ति मार्ग में ऐसी 16 बातें प्रसिद्ध है। तो आज का ये 5वां अध्याय ब्रह्मा चरित मानस का। कहाँ पर है ये नदी? पहले थोड़ा नदी के विषय में जानते हैं। सबसे पहली बात इस नदी के विषय में, ये नदी निकलती कहाँ से है? मानसरोवर से। ये नदी कहाँ से निकलती है? माउंट कैलाश से। कैलाश किसका धाम है? शिव का। तो शिव के धाम से निकलने वाली ये नदी है ब्रह्मापुत्र। ब्रह्मा भी कहाँ से निकला? कहाँ से निकला? शिव से। बाकी सभी नदियाँ जो है सागर से नहीं निकलती है, सागर की तरफ जाती है, पर जो ज्ञान नदियाँ है वो उल्टी है, वो समुद्र से निकल रही है और संसार की ओर जा रही है। ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट है। संसार की नदियां सागर में मिल रही है और हम नदियां सागर से निकल रही है, और हम में से भी सबसे बड़ी नदी ब्रह्मा पुत्र नदी। सबसे पहली बात। और इसमें और एक चीज जुड़ी है, हर नदी की प्यास होती है क्या? सागर से मिलन। ये नदी प्रतीक है चेतना का, आत्मा का, उसे भी प्यास है अपने स्रोत से मिलने की, और जब तक ये मिलन नहीं होता एक बेचैनी सी रहती है। हर नदी की एक ही तो प्यास है। एक नदी जा रही थी, बहुत खुश थी, पहले भी सुनाया है, और अचानक बीच में रेगिस्तान आ जाता है, वो रेगिस्तान की रेत उसका पानी सोखने लगता है, नदी को हलचल होती है, बेचैनी होती है, नदी कहती है अब मैं क्या करूं, मैं कैसे सागर तक पहुंचूं, हटो तुम मेरे रास्ते से, परंतु सागर वो रेगिस्तान विराट है, सहारा, दूर दूर तक मरुस्थल है। वो रेत पूछती है, वो नदी पूछती है उस रेत से कि अब मैं क्या करूं, तुम मेरे मार्ग में क्यों आ रही हो, हटो यहां से। वो रेत कहती है कि अगर तुम्हें सागर से मिलना है तो एक ही उपाय है, ऊपर उड़ जाओ, हवाओं पर सवार हो जाओ। रेत कहती है ये मैं कैसे करूं, तब मैं नदी कहती है मैं हवाओं पर कैसे जाऊं, तब क्या मैं नदी रहूंगी, मुझे नदी के रहते, नदी रहते हुए ही सागर में मिलना है अपने अस्तित्व के साथ। रेत कहती है ये नहीं पॉसिबल, ये संभव नहीं है, अगर तुम्हें सागर से मिलना है तो मिटना होगा। नदी कहती है मैं नहीं मिटूंगी। रेत कहती है अगर तुम नहीं मिटोगी तो हजारों हजारों साल यहीं रुक जाओगी, क्योंकि मैं बहुत विराट हूं, तुम कहीं पर दलदल बन जाओगी पर पहुंच नहीं पाओगी, और तुम्हारा पानी सारा मैं सोख लूंगा। इसलिए हवा बन जाओ। इसके पहले भी बहुत नदियां आई थी, कई सारी यहीं रुक गई, कुछ एक थी जिन्होंने मेरी बात सुनी और वो सागर तक पहुंच गई। तुम भी वाष्पीभूत हवाओं में सवार हो जाओ। पता नहीं उस नदी का क्या हुआ, उसने उस रेत की बात मानी या न मानी, परंतु अनंत के सागर में यदि मिलन मनाना है तो मिटना होगा, क्योंकि आखिर में तुम फिर सागर ही बन जाओगी। फिर तुम नदी नहीं रहोगी, तुम क्या बन जाओगी? सागर। सागर में बूंद है, एक तो ये बात है, दूसरा एक एक बूंद में सागर है। तुम वैसा बूंद बन जाओगी कि जिसमें संपूर्ण सागर समाहित है। तो सबसे पहली बात ब्रह्मपुत्र की, ये शिव से निकलती है। हमारा जीवन भी शिव से निकले, उससे निकला हुआ यह जीवन है, उससे निकली हुई हम नदी है। जैसे ब्रह्मा का जीवन था, उसका अपना कभी कुछ था ही नहीं, चाहे कोई महिमा कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, सब कुछ ऊपर भेज दो। कोई बहुत महिमा करे हमारी तो क्या करो? स्वीकार करो। स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? खुशी होगी। खुशी होगी तो क्या होगा? खुश हो गए और सुनने की इच्छा होगी। स्तुति एडिक्टिव है, व्यसन है उसमें। जितना स्तुति सुनो उतना पेट भरता है क्या? उसी की याद आती रहती है। और जो लोग निंदा करते हैं उनसे फिर दूर भागते हैं, वो शत्रु मालूम पड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज है माउंट कैलाश, मानसरोवर से निकली है नदी है। दूसरा ब्रह्मपुत्र अर्थात बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ी, लॉन्गेस्ट, 15th लॉन्गेस्ट है, 4000 लगभग, 3000 कुछ किलोमीटर। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। ट्रांस बॉर्डर, तीन देशों को पार करती है नदी। तीसरा कौन से? तिब्बत से निकलती है और फिर आती है भारत में प्रवेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, और फिर प्रवेश करती है बांग्लादेश में, और फिर वहां से बंगाल की खाड़ी। सबसे बड़ी नदी है ये। तिब्बत में उसका कोई और नाम है, सांगपो, तिब्बत में सांगपो नाम है। 1800 के ईस्वी में, ये एक ऐसी नदी है, जो भी नदियाँ होती है उसके तीन भाग होते हैं, ऊपर का भाग, बीच का भाग, निचला भाग। ऊपर का जो भाग होता है उसमें बहुत ज़्यादा वेग होता है, बीच का होता है वो थोड़ा कम, और जो लास्ट पार्ट होता है नदी का जहाँ वो सागर से मिल रही है, एकदम स्लो होता है। 1800 तक ये पता ही नहीं था ये नदी का ऊपरी भाग कहाँ है, जब कहीं वो सांगपो नाम का कोई व्यक्ति, उसने इसे खोज निकाला तो उस नदी का नाम ही वो पड़ा, सांगपो ब्रह्मपुत्र कहते हैं, यरलांग संग। तो तिब्बत से निकलती है, वहां से होते होते कहाँ प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। उसका क्या नाम है? जो उधर से होंगे उनको पता होगा, लिहांग, सियांग, लियांग, दो नाम है। और फिर वहां से आसाम, आसाम में उसका नाम है यमुना, वो वाली यमुना नहीं, वो जमुना है, ये दूसरा यमुना। और फिर वहां से वो प्रवेश करती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में वो किसके साथ मिलती है? गंगा नदी के साथ। गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम है पद्मा, और दोनों मिलके एक दूसरी नदी मिलती बनती है मेघना लास्ट, और जो मिलती है फिर बे ऑफ बंगाल। तो ये लंबा चौड़ा कोर्स है इस नदी का। अगला पॉइंट, ये एक ही नदी है जिसका नाम मेल है, बाकी सभी गंगा, यमुना, सरस्वती, मेघना, पद्मा, गोदावरी, और कौन, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और सरस्वती, व्यास, वो भी एक नदी, पर अभी है क्या? झेलम, बहुत कम नदियां हैं जिनके नाम मेल है, पुल्लिंग। तो ब्रह्मपुत्र एक नदी है जो मेल है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है सारे विश्व में? नील रिवर, नाइल। और सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी है पानी जिसमें सबसे ज्यादा है? अमेजोन। वो सबसे ज्यादा जिसमें पानी सबसे ज्यादा है। तो ये सब ज्योग्राफी है। उस दिन फिजिक्स देखा, आज बाप आए हैं तुम्हें हिस्ट्री और ज्योग्राफी सिखाने। तो मुरली में फिजिक्स भी है, मुरली में ज्योग्राफी भी है, मुरली में संसार के सब सब्जेक्ट है। ये कितनी नाइंसाफी है कि एक एक सब्जेक्ट का एक एक टीचर होता है, पर स्टूडेंट का को सारे सब्जेक्ट अकेले ही पढ़ना पड़ता है। ऐसा एक स्टूडेंट ने कहा था कभी। अगला चौथा पॉइंट, यंगेस्ट नदी है ये, यंगेस्ट। वो बाकी जो है वो पुरानी पुरानी है, गंगा यमुना, ये एकदम जवान। शायद अभी अभी पता चला है, कुछ वर्ष हो गए, पहले से होगी पर एक्सप्लोर नहीं किया गया, पता नहीं चला कहाँ कहाँ से गुजरती है, इसलिए ये सब बातें हैं। तो ये चार पॉइंट है ब्रह्मपुत्र की, इसकी हमें चर्चा नहीं करनी है, ये आप किताबों से पढ़ सकते हैं। चर्चा जो हमें करनी है वो आगे की 12 पॉइंट्स है। इस ब्रह्मपुत्र से हम क्या सीखे, नदी से हम क्या सीखे? सबसे पहला पाठ जो नदी से या कहो ब्रह्मपुत्र से सीखना है वो है निरंतर बहते रहना। जीवन अर्थात सतत प्रवाह, बहते रहना है, फ्लो है, एक फ्लक्स है, सतत चलना, चरैवेति चरैवेति, नहीं रुकना है तुमको, रुकना ही नहीं है। रुक गए कि गए, रुक जाता है जो, उसको क्या हो जाता है? रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस इंग्लिश में कहते हैं। जो बहता रहता है वो काई वगैरह नहीं लगती है उसको। इसके लिए नदी जैसा क्या करना है? बहते रहना है, बहते रहना है, बहते रहना है। जितना ज्यादा बहते रहेंगे उतना अच्छा है, कहीं पर भी रुकना नहीं है। जो रुक गया वो क्या बन जाता है? तालाब बन जाता है। और तालाब और नदी में क्या अंतर है? तालाब का पानी सड़ता है, नदी का पानी सड़ता नहीं है, वो बहता रहता है। तालाब में और क्या होता है? मच्छर, बीमारियां। नदी में वो सब नहीं होता है। और पवित्र माना जाता है। सबसे पहला है फ्लो, क्या करते रहना है? बहते रहना है, जीवन प्रवाह है। मन में रेजिस्टेंस नहीं लाने है कोई भी, जहां पर मन में अवरोध है वहां पर ये प्रवाह रुक जाता है। बहते रहना है, बहते रहना है, बहते रहना है, बिना थके, बिना रुके, बिना हार खाए। अब तक चाहे कुछ भी हो गया हो जीवन में, पर रुकना नहीं है, क्योंकि मंजिल तक पहुंचे ही नहीं है अभी तक। नदी को प्यास होती है सागर की, और उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है, बस सागर से मिलन, और कोई लक्ष्य नहीं है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्ट करने का स्वभाव। नदी क्या करती है? पहाड़ आ गया बीच में, पत्थर आ गए तो कंप्लेंट करती है, पत्थर क्यों आ गया, मुझे ऐसी जगह नहीं चाहिए, मुझे फ्लैट प्लेन चाहिए, मैं एकदम आराम से पहुंच जाऊं सागर तक। ऐसा हो सकता है? नहीं। नदी को इंग्लिश में कहते हैं मीएंडरिंग रिवर, मीएंडरिंग, मीएंडर अर्थात ऐसे ऐसे जो होती है उसको मीएंडर कहते हैं। उसका प्रवाह ही ऐसा है, जीवन भी ऐसा ही है। ब्रह्मा के जीवन को देखो तो उसमें कितने उतार चढ़ाव है। कुछ आसानी से कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। स्थापना भी आसानी से नहीं हुई, पालना भी आसानी से नहीं हुई, सब में कितने विरोध, कितने प्रतिबंध, कितने लोगों का पूरा हलचल ही हलचल है, परंतु संघर्ष में ही है। इसलिए परंतु जैसी परिस्थिति उस तरह अपने आप को मोड़ लेना। नदी हमें क्या सिखाती है? मोल्डिंग नेचर सिखाती है। पानी का स्वभाव क्या है? उसको मटके में डालो तो मटके का रूप ले लेता है, बॉटल में डालो तो बॉटल का रूप ले लेता है, ग्लास में डालो तो ग्लास का रूप ले लेता है। जो जैसी परिस्थिति है उसको तुरंत वैसे स्वीकार करना और अपने आप को मोल्ड कर देना। मधुबन में आए, ऐसा कमरा मिल गया कि जहां ज्यादा ही ठंडी है, तो मन में एकदम से उदासी छा गई। हमारे साथ जो आया उसको अच्छा कमरा मिला, हमें नहीं मिला। एकदम कंपैरिजन, और कंपैरिजन जहां है वहां क्या है? जेलसी। ईर्ष्या का बीज क्या है? कंपैरिजन। जब हम तुलना करते हैं तो ही ये ईर्ष्या चालू होती है। अगर सभी को वैसा कमरा मिल गया तो हम खुश हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमको वैसा मिला और बाकी सबको अच्छा मिला तो वही कमरा अब दुख दे रहा है। अगर सबके सब उसी कमरे में आ गए तो एकदम शांति है। ज्यादा ठंड लगती है तो क्या करता हो, क्या करते हो? वो बच्चा कहता है कि मैं हीटर के पास बैठ जाता हूं। अगर ठंडी और ज्यादा लगी तो क्या करता हूं? हीटर चालू कर देता हूं। तो समझा ना। केवल हीटर के सामने बैठना ये भी ठंडी को भगा देगा, चाहे फिर वो वैसे बैठो या मन में बैठो, सेम है। क्योंकि बैठकर ठंडी कम होगी ना, पर ज्यादा बड़ी तब चालू किया। तो दूसरा सिद्धांत जो नदी से सीखना है वो क्या है? एडजस्ट, एडेप्टेबिलिटी, एडजस्ट हो जाना, फ्लेक्सिबल हो जाना, मोल्ड कर देना अपने आप को जैसी भी परिस्थिति। अब ये है, अब इसी में हम खुश है, अब बस इसी में खुश है। और जैसे नुमा शाम का योग इंटरनेशनल योग है, आज तीसरा रविवार इंटरनेशनल योग, हमने सुबह से सोच के रखा है आज शाम को सेंटर पर जाएंगे और बहुत पावरफुल योग करेंगे, क्योंकि नुमा शाम कितने दिनों से सेंटर पर गए ही नहीं, सुबह जाते हैं केवल, और बस अभी निकल ही रहे थे 6 बजे कि मेहमान आ गए। अब क्या करें, कहें उनसे जाओ? और वो भी हम ही उनको बुला रहे थे इतने समय से, और वो आज पधारे। तो दो मार्ग है, एक तो दुखी हो के, उदास हो के, नाराज हो के, कोसते रहते हुए, इसमें ना योग है ना उनकी। वो भी सोचेंगे पता नहीं हम, क्योंकि लोग समझ तो लेते हैं ना हाव भाव को देखकर कि हम अनचाहे मेहमान हैं। दूसरा मेथड है, दूसरा मार्ग है, हम अभी सेंटर पर जाके योग करने वाले थे, अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, घर पर ही योग करेंगे। इनके लिए जो कुछ बनाएंगे भोजन खाना, ये बहुत प्यार से बनाएंगे, बस यही योग है। ये क्या कि एडेप्ट, एडजस्ट, फ्लेक्सिबल, मोल्ड, ये नदी सिखाती है। अगला चौथा अनित्यता, तीसरा नदी क्या सिखाती है? अनित्यता। एक अंग्रेजी फिलोसोफर ने कहा, यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस, एक ही नदी में दो बार पैर नहीं रख सकते, क्योंकि पानी तब तक दूसरा आ जाता है। तो जी नदी भी क्या है, क्या सिखाती? सब कुछ अनित्य, जो पानी अब बह रहा है थोड़ी देर के बाद वो नहीं है, अनित्य है। जीवन भी अनित्य है, इसी नदी की तरह सब कुछ बहा जा रहा है, यहाँ सब कुछ बदल रहा है। यहाँ ये नहीं समझो कि जैसे वो व्यक्ति तब था 10 साल पहले अब भी वो वैसा ही होगा, जैसे हम बदल गए वो भी बदल गया, जैसे हमारे जीवन में ढेर सारी बातें हो रही है उसके जीवन में भी ढेर सारी बातें हो रही है। हर एक अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत आगे बढ़ चुका है, चाहे पॉजिटिव रीति से या निगेटिव रीति से, भावनाओं की रीति से, मैच्योरिटी की रीति से, किसी भी रीति से। इसके लिए जिस व्यक्ति को मैं कल जानता था वो आज वो नहीं है, जिस व्यक्ति को हम कल मिले थे आज उससे नहीं मिल रहे, आज ये दूसरा है, उसके पास एक दिन का नया अनुभव है। इसके लिए हर व्यक्ति अलग है। जब ये क्लास चालू की थी आधे घंटे पहले, और अभी ये जो क्लास है ये अलग है, बदल चुकी है, सब कुछ बदल गया है यहाँ का, केवल समय नहीं बाकी सब सब कुछ बदल गया है। लोग कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ कितने लोग बैठे होंगे अभी, कितने हैं? 50 50 नहीं है ये, कितने हैं? हम हर एक में तीन तीन समाये हुए हैं, एक वो जो हम समझते हैं मैं हूँ, दूसरा वो जो दूसरे समझते हैं मैं हूँ, और तीसरा वो जो मैं दूसरों के सामने स्वयं को दिखाना चाहता हूँ। तो एक एक में तीन हो गए, कितने हो गए यहाँ? 150 लोग तो है अभी यहाँ पर। ये तो 150 और दूसरा, हर एक में तीन तीन है, हमारे तीन स्वरूप ब्राह्मण फरिश्ता देवता, तो कितने हो गए? इसका मतलब जब दो लोग एक कमरे में मिल रहे हैं तो कितने लोग मिल रहे हैं? तो अनित्यता, नदी से क्या सीखना है? अनित्यता, अनसर्टिनिटी, सब बदल रहा है, सब बदल रहा है, पकड़ के नहीं बैठना है कोई चीज़ को, ये ऐसा ही। हाँ, दूसरा और एक चीज़, किसी के बारे में हमारे विचार फिक्स्ड ना हो, फिक्स्ड आइडियाज है, एक बार देख लिया वो लेट आता है, बस माइंड में फिक्स कर लिया, वो ना हमेशा ही लेट आता है। एक बार उसने झूठ बोला तो इतना पक्का हो गया है कि इसकी तो आदत ही है झूठ बोलने की, हमने एकदम पकड़ लिया है उसकी उस स्वभाव को। उसके बाद उसके जीवन में क्या कुछ हो गया, उसने कितना परिवर्तन कर दिया, कितने सारे, पर वो सच उसका बोलना अब हम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमने उसकी वो बात पुरानी पकड़ के रखी है कि ये झूठ बोलता है, इसका स्वभाव झूठ बोलने वाला है, क्योंकि हमने देखा था अपनी आंखों से, सुना था इसको झूठ बोलते हुए, सुना होगा देखा भी होगा, पर उसके बाद क्या हुआ तुमको पता है क्या? अगर भगवान ऐसी एक एक की बात याद रखे तो क्या क्या गुल खिलाए हैं हमने 63 जन्म। तो नदी हमें क्या सिखाती है? अनित्यता। अगला, नदी हमें सिखाती है फ्लो स्मूथली, मतलब नदी के साथ बहो, नदी की धारा के खिलाफ नहीं बहना है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बहना है, कहाँ बहना है? दो पत्ते नदी में गिरे, एक ऊपर चढ़ने लगा एक नीचे, ऊपर जो चढ़ रहा था धारा के विरुद्ध, उसके जीवन में बड़ा संघर्ष था, लड़ाई कर रहा था, वो सोच रहा था मैं इसे पार करके रहूंगा, पर जो दूसरी दिशा में बह रहा था वो नदी के साथ बह रहा था, उसे कुछ करना ही नहीं है। बाबा कहते सहज है सब, अगर सहज नहीं हो रहा है इसका मतलब हम कहां बह रहे हैं? अपोजिट दिशा में। किसी व्यक्ति की पत्नी नदी में गिर जाती है तो वो कूदता है और उल्टी दिशा में बहने लगता है, ढूंढने लगता है, उसके दोस्त ऊपर से, अरे क्या कर रहे हो, नदी नीचे जा रही है, तुम्हारी पत्नी नीचे गई होगी। वो कहता है नहीं हो सकता, ये हमेशा हर काम उल्टा ही करती है ये जरूर ऊपर ही गई होगी। अध्यात्म अर्थात सतत जीवन के साथ बहना, चीजें आ रही है उनको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो, जहां अस्वीकार है, जहां रेजिस्टेंस है, वहां बहुत पीड़ा है, वहां बहुत दर्द है, नहीं हम नहीं स्वीकार करते, ये मुझे अपने रूम में ये पार्टनर नहीं चाहिए, इसको बदलो, इसको बदल दो, ये बॉस बिल्कुल अच्छा नहीं है, जब तक ये बॉस बदलता नहीं है ना तब तक मुझे चैन नहीं है सारी कोशिशें कर रहे पर बॉस का क्या कर सकते हैं आप बॉस को कहां से बदलोगे, तो दुखी होंगे बस, और तो क्या करेंगे। जैसे एक व्यक्ति ने फोटो टंगा रखी थी अपने बॉस की घर पर, दिन भर ऑफिस में काम करके आने के बाद जूता निकालकर उस फोटो को पिटाई करता था रोज, उधर तो कर नहीं सकता तो क्या करे, कैसे निकाले अंदर का, अंदर की भड़ास तो बहते रहो, चीजें आ रही है चीजों को स्वीकार करो, ठीक है, हमारे साथ बिना वजह कुछ भी नहीं हो रहा है, अचानक कोई व्यक्ति आता है, थोड़े समय रहता है, चला जाता है, और उस थोड़े समय में इतना उसने दुख दे दिया, हम सोच ही रहे थे अब क्या करें, तो पता चला वो चला गया। अब एक व्यक्ति को कोई काम कराना था किसी ऑफिस में, वो रोज जाता है उसके पास, पर सामने उस सामने वाला जो व्यक्ति होता है क्लर्क, उसको क्या चाहिए इसको समझ में ही नहीं आता है। वो बेचारा भोला भाला व्यक्ति है, उसको कुछ नीचे से चाहिए था, इसको समझ भी नहीं आता। ये रोज आता है और रोज सामने वाला बहाना बनाता है क्लर्क, आज नहीं कर लाओ, आज ये है आज वो है। इसको एक उसका दोस्त मिलता है, अरे मूर्ख बुद्धू तुमको इतना भी नहीं समझता, उसको क्या चाहिए, उसको मिठाई देनी होती है घर के बच्चों के लिए, उसके तो मिठाई लेके जाने का, मिठाई होता पैसा। वो कहता है ऐसा ऐसा है, ओ नो, वो जाता है, तब तक वो क्लर्क बदल जाता है और जो क्लर्क आता है वो एकदम ईमानदार, तुरंत काम करके दे देता है। तो चीजें बदल रही है, व्यक्ति बदल रहे हैं, सब बदल रहा है। इसके लिए स्वीकार कर लो, कोई भी परमानेंट नहीं है कहीं पर भी, आज है कल नहीं रहेगा। इसके लिए कोई यहां से चला जाए या कोई वहां से यहां आ जाए ये सोचना नहीं है। जो है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ये है प्रवाह, ये है बहना, स्मूथली बहना। उसके बाद में नदी अर्थात रिलैक्स, कोई जल्दबाजी नहीं। क्या नदी को जल्दबाजी है जल्दी पहुंचू सागर तक? नहीं, एक व्यक्ति है पूरी सृष्टि में, देखो सबसे ज्यादा जल्दबाजी कौन कर रहा है, भाग कौन रहा है? सूरज को कोई जल्दी है जल्दी जल्दी उगू ना, आराम से अपने टाइम पर उगता है। चंद्रमा को कोई जल्दी है? तारों को कोई जल्दी है? वो जो पक्षी पंछी, किसी को जल्दी है कि हम जल्दी करें थोड़ा? कभी देखा किसी को जल्दी करते हुए? भागो भागो भागो। मनुष्य ही एक जो क्या कर रहा है, भाग रहा है भाग रहा है, इधर से भागो उधर भागो उधर भागो उधर भागो इधर भागो उधर। एक तो लेट सोना और फिर लेट उठने के बाद में भागम भाग, एकदम उठो, चार बजने को 5 मिनट कम है, फटाफट उठो और फिर भागो अमृत वेला, और फिर आके सो गए, और फिर सीधा 7 बजने को 10 मिनट कम है, भागो अब मुरली में, फिर आके कुछ और किया, फिर भागो अभी ऑफिस के लिए। भागम भाग ही चल रही है। हरी वरी एंड करी, इसलिए तो बीमार है। तीनों चीजें, हरी वरी और करी, वरी भी है हरी भी है और करी भोजन तेल मसाला। ये तीन ही कारण है सारे रोगों के, हरी वरी और करी। तो नदी अर्थात क्या, अनहरीड रिलैक्स। इसलिए रोज प्रकृति में जाना है और प्रकृति को ऑब्जर्व करना है। झाड़ देखो, पक्षियों को देखो, कितना स्मूथली सारा मैनेजमेंट चल रहा है प्रकृति का, और हमारा मैनेजमेंट देखो कैसा चल रहा है जीवन का, भागम भाग ही है उसमें, बस पहुंच तो जाते हैं परंतु ऐसा करते हो, हाँफते हुए पहुंचते। तो नदी से क्या सीखना है, ब्रह्मपुत्र से क्या सीखना है, शांत। कितनी हलचल, इधर हंगामा उधर हंगामा, हापुड़ में हंगामा वहां हंगामा। बाबा को कभी कुछ डिस्टर्ब होते हुए देखा? 10 बार फोन करते हुए देखा, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं, जो हो रहा है ठीक चल रहा है। ड्रामा में निश्चय, ये निश्चय है कि अगला नदी अर्थात परसिस्टेंस। एक तो कहा था फ्लो, वो सहज है, डांस है वो नदी का। एक है उसकी ये जिद है कि उसे सागर तक पहुंचना ही है, दृढ़ निश्चय है वो, परसिस्टेंस उसमें बिल्कुल रिजोल्यूशन उसका, चाहे वो कहीं रुक नहीं जाती है कहीं पर भी, उसे पहुंचना ही है बस। और नदी का एक ही लक्ष्य है, ये भी सीखने जैसा है नदी से, नदी का कोई और लक्ष्य नहीं है, वो कहती है कि बस मुझे वहां तक पहुंचना है, परसिस्टेंस। अगला नदी का स्वभाव कैसा है, मदद करने का। जाती है तो क्या करती है, कितने लोगों को जीवन देती है। खेती वो सब कहां होती है, नदी के किनारे। सभ्यताएं कहां पली फूली और बड़ी हुई, नदी के किनारे। तो नदी एक रीति से क्या है, हमारी माँ है। और इसके लिए वो एक दूसरा पॉइंट है, परंतु यहाँ मददगार है, वो सबसे ज्यादा मदद करती है। और इसमें है निस्वार्थ भावना। गीत है ना हमारा, नदी ना अपना जल पीती, पेड़ ना अपने फल खाते, सद्गुण अवगुण में के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। नदी अर्थात निस्वार्थ, अपने लिए कुछ भी नहीं। नदी अर्थात वहां का पानी यहां पहुंचा देती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ऐसी करती है ना, वहां का पानी इधर पहुंचा देती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है नदी। अगला, नदी अर्थात भारत में नदी को मां कहा जाता है, क्या करती है ये, पालना, जीवन की पालना। नदी में, नदी का जीवन और हमारा जीवन लगभग सेम है। वो डेड बॉडीज वो सब कहाँ डाले जाते हैं, ऐश राख वगैरह कहाँ डाली जाती है, नदी में डालते हैं ना, तो वो एक माँ है, माँ की तरह पालना करने वाली है, गॉडेस, गंगा नदी देवी, माँ की तरह जो भी इर्द गिर्द रहते हैं उन सब की पालना करती है। और यहीं पर मंदिर तीर्थ स्थान बन जाते हैं जहां जहां से वो गुजरती है। ज्यादा से ज्यादा तीर्थ स्थान कहाँ है, नदी के किनारे है। हाँ, वो भी एक दूसरा पॉइंट है। और दूसरा, अगला पॉइंट, नदी प्रकृति के नियमों को बराबर फॉलो करती है, प्रकृति के नियमों को फॉलो करती है। वो वैसे कुछ नहीं करेगी, परंतु यदि उसके साथ छेड़छाड़ की तो फिर वो अपना रुद्र रूप भी धारण करती है, फ्लड। वो फ्लड ऐसे ही नहीं आते, सतयुग त्रेता में फ्लड आते थे क्या, बाढ़ आती थी नहीं, क्योंकि देवता कभी कोई छेड़छाड़ नहीं करते थे जो हम लोग अभी करते हैं नदियों के साथ। नदियों को क्या बना दिया है हमने, क्या डालते हैं उसमें, पूरा उसमें गटर जैसा बना दिया है नदियों को, नाले का पानी बन गया है वो। तो ऐसा जब उसके साथ अत्याचार करोगे तो नदी क्या करेगी, रुद्र रूप धारण करेगी। तीर्थ स्थान, तीर्थ स्थानों का अर्थ है परमात्मा के स्थान, वहां पे लोग जाते किस लिए, काम विकार, इसलिए वहां पर प्राकृतिक आपदाएं होती है। पिछली बार हुआ था ना 2013 में उत्तराखंड त्रासदी, ऐसे ही नहीं होता है कुछ भी, बहुत सूक्ष्म है। अंग्रेजी में एक शब्द है EPS, आइंस्टेनियन पेन वेव्स, EPW, आइंस्टेनियन पेन वेव्स। अर्थात क्या कहते हैं, जब भी जानवरों को दुख दिया जाता है, सताया जाता है, तड़पाया जाता है, मारा जाता है, उनकी जो दर्द, उनकी जो चीख, उनकी जो चित्कार है वो प्रकृति में जाती है और फिर प्राकृतिक आपदाओं का निर्माण होता है। इनको कहते हैं आइंस्टेनियन पेन वेव्स, EPW। बहुत सूक्ष्म संबंध है इसका, ऐसी त्रासदी नहीं आती है कोई भी, प्राकृतिक आपदा ऐसे नहीं आती है, कुछ ना कुछ हुआ है। तो प्रकृति का नियम फॉलो करने वाली है। अगला, नदी अर्थात इक्वालिटी, सबको समान, सबके प्रति समान। नदी के लिए ये VIP ग्रुप है, ऐसा कुछ नहीं है, ये VIP गांव है, यहाँ के सरपंच, यहाँ के सब अमीर लोग हैं, इनको थोड़ा ज़्यादा देती हूँ पानी, ये तो एकदम गरीब आदिवासियों का गांव है, छोड़ो इसको, यहाँ कोई नहीं, यहाँ दूसरा कोई छोटी मोटी नदी कर लेगी सेवा, मैं बड़ी हूँ यहाँ पानी थोड़ा कम दूंगी। नदी में कोई भी भेदभाव नहीं है। अच्छा, कौन आया है कोर्स करने, अच्छा वो क्लर्क, चलो कोई दूसरा कर ले उसका। कौन आया है, कलेक्टर, मैं करूंगा उनका कोर्स। उनका कोर्स करने में क्या है, थोड़ी सम्मान की बात है। बाकी वो कौन आया है, अच्छा वो नौकर चपरासी आया है, वो माता जी सेंटर पे आती है ना माता, वो करा देगी कोर्स उनका। भेदभाव है हमारे अंदर, शब्द जो है ना वो भेद क्रिएट करते हैं। कौन आया है, भंगी आया है, भंगी वो शब्द यहां स्ट्राइक हो गया, उसने एक डिवीजन क्रिएट किया है, वो उधर वो आया है, शब्दों में पावर है बहुत। कौन आया है, गवर्नर आया है, हम जाएंगे सेवा करने, हमारा फोटो चाहिए हार पहनाते हुए। कई लोगों को इसका बहुत ज्यादा क्रेज होता है, सारे VIPs के साथ फोटो, हमारा फोटो होना चाहिए, गिफ्ट देते हुए, राखी पहनाते हुए, बैच देते हुए, और क्या, फ्लावर फूल देते हुए, हार पहनाते हुए, शॉल पहनाते हुए। तो नदी अर्थात समान, इक्वालिटी, कोई भेदभाव नहीं, सब समान है हमारे लिए, सब, सारा विश्व ही मेरा कुटुंब है। और ये जो लेबल्स जो लगे हुए हैं, काला, गोरा, सुंदर, पढ़ा लिखा, अनपढ़ा लिखा, ये सब बाहर का है। हमें कल्याण की आत्माओं का करना है, ना कि लेबल्स का। वो जो लेबल चिपकाए हुए हैं ना, इससे क्या लेना देना। ठीक है, हर एक को सम्मान दो, परंतु समान सम्मान, समदर्शी। तो नदी अर्थात इक्वालिटी। कितने हो गए? 10 और 2 आप बताएंगे। नदी क्या करती है? प्यूरिफाई करती है। इसीलिए नदियों को क्या कहा गया? पतित पावन। पर वहां जाके पावन कोई होता नहीं, वो दूसरी बात है, पर शरीर तो पावन होता है कम से कम। रामकृष्ण परमहंस से पूछते थे लोग कि गंगा पतित पावन ही है, पर यहाँ लोग इतने लोग नहाते हैं, पर ये कोई पावन होता क्यों नहीं? ये तो वैसे ही निकलते हैं पापी के पापी। वो कहते थे कि गंगा जो नदी है ना, वो है तो पतित पावनी, और ये जो पाप के पक्षी जो है ना, जो पूरे शरीर में रहते हैं, वो जैसे ही व्यक्ति वहां स्नान करने जाता है, उसके पहले उड़ के झाड़ों पर बैठ जाते हैं, और जब व्यक्ति स्नान करके बाहर निकलता है, वापस आके बैठ जाते हैं उस पर। इसके लिए जैसे के थे रहता है व्यक्ति। परंतु नदियों में क्यों प्योरिटी की पावर है? क्योंकि उनमें ढेर सारी जड़ी बूटियां मिक्स होती है। इसलिए सतयुग त्रेता की जो नदियां है वो बहुत प्योर है, वहां पर कोई बीमारी ही नहीं है। वैसे भी अगर शायद त्रेता के अंत में कोई होता भी होगा, तो वो नदियों के पानी से ही ठीक हो जाता होगा, क्योंकि सारी जड़ी बूटियां, सारी औषधियां कहाँ हैं? वही है, उसी में है। तो नदियों में ये पावर होती है, मिराकुलस हीलिंग एनर्जी होती है। आज भी लोग गंगा पानी रखते हैं ना अपने घर पर, खराब नहीं होता है वो, रखते हैं। तो नदी की एक ये स्पेशलिटी है, चाहे कहीं से भी बहती हो, पर अपनी पवित्रता को नहीं खोती है। ये हमारा स्वभाव है, हमें भी इस नदी जैसा बनना है। चाहे संसार में कितनी अपवित्रता हो, कितना ही विकार हो, कैसा भी विकारी वायुमंडल हो, परंतु हमारी पवित्रता इतनी स्वच्छ, इतनी शक्तिशाली हो कि कोई भी वातावरण हमारी पवित्रता को धूमिल ना करे। क्योंकि संसार में कोई भी टीवी चैनल खोलो, कोई भी मीडिया, कोई भी पोस्टर, कोई भी किताब, कोई भी मैगजीन, कोई भी एंटरटेनमेंट, सब जगह एक ही चीज़ भरी पड़ी है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी न्यूज़, कोई भी अखबार, सब में कूट कूट कर क्या भरा हुआ है? विकार, विकार और विकार। इसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। हवाओं में ही विकार है। यहाँ तो काम की आंधी चल रही है, ऐसी आंधी में मैंने दिया जलाया है। तो लास्ट पॉइंट, पारदर्शी कब है नदी? जब वो स्वच्छ है, नीचे का दिखने लगता है, नहीं तो कुछ भी नहीं दिखेगा। इसके लिए नदी जैसा बहना है, परंतु कैसे? स्वच्छता के साथ, ताकि कुछ छिपाने जैसा कुछ भी ना हो हमारे जीवन में। जीवन कैसा हो? पब्लिक लाइफ, खुली किताब जैसा। तो वो 4 बातें और ये 12 बातें हमें केवल नदी से सीखने की बात नहीं है, प्रकृति में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उन हर चीज से सीखना है। प्रकृति हमारी शिक्षक है, निसर्ग हमारा शिक्षक है, नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो आज का 5वां अध्याय ब्रह्मा पुत्रा। तो जैसे ब्रह्मा का जीवन था, वो उस नदी के जैसा जीवन था, हमें भी अपने जीवन को ऐसा बनाना है। अच्छा, ओम शांति।
प्रभु से।